of my mind to the nectar of your lotus feet, meaning please let it have a taste of the rasa of those lotus feet, by which it will never be able to become attached to anything else.
What it all? What is it all?
Saying that the devotee is praying that please let my mind, which is like a bee, be attached to the nectar of your lotus feet, so that it won't have any attachment for anything else.
Yes. So, so sweet, so melodious, so nectar, that anyone can anyhow keep his eyes to other things. So attractive. Then, yadapi samadhisu.
Although Brahma in his samadhi cannot attain a glimpse of even a ray of the tips of the nails of your feet, still, O Achyuta, having heard of the ways of your astonishing mercy, I yearn to see you.
What he is telling? First he told, you remember? But yet?
Having heard of the ways of your astonishing...
I want this. Brahma has nothing. In samadhi, he cannot taste. He cannot see lotus feet of Krishna. But I want. Then anyone tells, ask him that you are more than Brahma. No, I am the feet dust of Brahma. But yet I want. He does not want. But I want. Why? There is a greed. Brahma has perhaps no greed, but I have greed. This greed is so valuable thing that however he may be wretched, and how he may be lusty or anything, but greed may be there. And it is no certainty that it will be in very sacred, pure heart. It depends on the mercy of any bona fide guru and the rasik bhavuk bhakta. So he has some association of Rupa Goswami. Sadhu Sangha of Rupa Goswami. Brahma cannot have these things, but he wants to have them. Brahma cannot have in this samadhi, but he wants that I want. Then,
O Madhava, although I don't possess even a sesame seed of bhakti for you, by your supreme power, which makes the impossible possible, please fulfill the desires of my heart.
Again, without seeing.
O Madhava, although I don't have a sesame seed.
Why he is calling Madhava?
Because he's the husband of Radharani.
Sweeter than Madhu. More sweet than Madhu.
Madhu is the Matiradika. So without the mercy of Radhika, anyone cannot have this thing. So he is calling his like Madhava. Because from where Krishna takes it? From the heart of Srimati Radhika. So he is praying, Madhava, that you have the association of Madhavi, and that is, you are so much Kripalu hai.
Merciful.
You are merciful. Otherwise, you are not merciful, you are crooked. And you are tricky. And you are also dhurta.
Cheater.
But Madhavi is there. She is so simple, kind-hearted, and I think that you are with him, her, so you can have this hour of your mercy. Otherwise, no. So I want the some sprinkle with Srimati Radhika. Then what? Without saying.
Oh, but I know that you can make the impossible possible, so therefore I'm praying for your husband.
Yes. It is impossible for me. If it is impossible for Brahma to fulfill me, very impossible, very impossible. But I know that you can do anything. It cannot be done. Asambhav ko sambhav karne wale. What means?
Who makes possible the impossible.
So, I am praying you that you should do possible what is impossible. Otherwise, in lakhs and lakhs, but I cannot help you. After that, what is impossible? Mercy of Madhav. But I know that it is impossible, but I agree. So you must give up. So this greed is more than Sukriti. Then,
hey Sanatan, your lotus feet put to shame the sweetness of heavenly nectar. Therefore, please make the bee of my mind undistracted by material desires and give me eternal residence at your lotus feet. This is my only prayer.
What is it?
He's saying that the nectar of his lotus feet, it puts to shame heavenly nectar. So therefore,
in
praying
for the mercy of this lotus feet. Again, more. And last one. I am a below Lataradya Sanatana. What is it?
O Sanatana, your lotus feet put to shame the heavenly nectar.
Kalitad Bhutara Sabharam.
Therefore, please make be of my mind, undistracted by material desires, and give me eternal residence at your lotus feet.
Who has written?
Rupa Goswami.
When he did this poem, at once he did Radhe Jai Jai Madhava Devi. Parallel to this is this kirtan. For Krishna he did Krishna Deva Bhantam. And Srimati Radhika, Radhe Jai Jai Madhava Dei. Go Kulutaran. Both. You should try to remember. Now you can go and help each other for midday and you can take rest. Gaur Pramanande. Thank you.
Of samadhi by bhakti rasa bij. This is speaking of the seed which is planted within the heart of all of us when we have the opportunity to come into the association of sadhana. So I think because we are present here in the association of such a very mahapunya lord, very highest personalities in this room, and most of you are hailing from the very sacred land of Bharatvarsha, we understand the culture and the importance of sadhus. Without sadhus, we cannot make progress in this human form of life. Sadhu sangha, sarva shastra koi. This means that all of the shastras, all of the Vedas, they are declaring very loudly, associate with sadhu, sadhu sangha, associate with sadhu. And then it says, lava matra, sadhu sangha, sarva siddhi hoy. That even with a very moment of association with sadhu, one can attain siddhi, perfection of the human form of life. So, but that is determined by our receptivity to sadhu. Someone can come into connection with proper sadhu, but if he is not open to hear the message with an open heart, then not so much benefit can come. But because we have performed some kind of sukriti in previous life, now this opportunity has come here. So, as was stated, what we just read, Srila Swami Ji here, Srila Narayan Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, is a very close associate of Srila Prabhupada Bhakti Vedanta Swami Maharaj. There is a whole history of their connection together, and the fact of the matter is that there is no one living today in this world who has such a close connection with him. Even prior to Swami Prabhupada coming to the West to start the Hare Krishna movement 30 years ago, Srila Narayan Maharaj was associated with him when he was simply living as a very simple sadhu with no money, no anything, in Vrindavan Dham. And in fact, he was very closely connected with him at the time of his taking the sannyas order of life, the renounced order of life. It was in fact by the inspiration of Srila Narayan Maharaj that Swami Prabhupada became a sannyasi. This inspiration and also his guru day, Srila Keshav Maharaj. So, he has many very great credentials. It is impossible for me to even begin to enumerate them. But surely by hearing this Hare Katha this evening, you will all be very blessed and you will fully be satisfied in your hearts. Hare Krishna.
Jnananjana Salakaya Chathurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Vancha Kalpa Tarubhasya Kripasindhabhyay Vacha Patitanam Pamanebhyo Vaishnavibhyo Namo Mahabhadannaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari. Yang Prabhajantam Anupetam Apesha Krityam Dvaipayano Virahaka Tarayajuhavo Putreti Tanmaya Tadataravo Bhinedu Tam Sarvabhutari Dayam.
मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं आज हिंदी में ही बोलूं। मैं अंग्रेजी तो बोल सकता हूँ किंतु मेरी अंग्रेजी बहुत पुअर है, इसलिए हिंदी जानने वाले ही अधिकांश हैं और हम लोगों के साथ में जो घूम रहे हैं डिवोटी लोग वो तो रोज रोज अंग्रेजी में सुन ही रहे हैं, इसलिए मैं आज हिंदी में ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने आराध्यतम शिष्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुभार श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, हमारे गुरु जी से नहीं, उन्होंने संन्यास लिया था, हमारे गुरु जी के गुरु से ही उन्होंने मंत्र लिए थे और उन्हीं की इच्छा से इस जगत यहाँ पर पश्चात देशों में आए और भगवान का नाम कीर्तन प्रचार किया। उनसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपने शिक्षा गुरु के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आप इसके हमारे पहले हमारा परिचय जो दे रहे थे उन्होंने बताया कि मैं मथुरा में रहता हूं। मैं बिंदा मथुरा मन में ब्रज की चरण रेणु को धारण करने के लिए श्री पर आया। न मैं कोई विद्वान हूं, न बहुत बड़ा कोई भक्त हूं, बहुत दीनहीन हूं, किंतु लालसा बनी रही वैष्णव के चरणों की धूली बनी, इसलिए घर बार नौकरी चाकरी परिवार पुत्र स्त्री सब छोड़ करके 24 वर्ष की अवस्था से ही करी वृंदावन में मथुरा में निवास करता हूं। कहीं वृंदावन की चरण धूली मैं स्पर्श कर दूं तो हमारा जीवन धन्य हो। मैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी जी के संबंध में 1946 से ही हमारा उनका परिचय है, आज 50-55 वर्ष हो गए जब हमारे गुरु जी के साथ में भेंट करने आते। बहुत विद्वान आदमी थे। हमारे गुरु जी ने अपनी दो पत्रिकाओं में मासिक पत्रिकाओं में बंगला और हिंदी में उनको संपादक बनाया और तभी से आज तक उनको बहुत उनकी मैंने सेवाएं की, उनकी सारी पुस्तकों को मैंने वृंदावन से दिल्ली से न्यूयॉर्क में भेजा, वो हमसे आने के लिए आग्रह कर हमारे साथ में चलिए। मैंने कहा जी अभी नहीं, अभी गुरुजी हमारे यहाँ उनकी सेवा करूंगा पीछे आऊंगा। मैं तो समझता हूँ कि भगवान की इच्छा से ही और उनकी इच्छा से मैं इस पाश्चात्य देशों में आया। जो कुछ उन्होंने प्रचार किया बहुत थोड़े दिनों में मैं उसी का थोड़ा सा जूठा प्रचार प्रचार हुआ प्रचार करने के लिए मैं आया हूं। मैं वहां वहां पर गया जहां पर उनके चरण पड़े थे, उनकी धूली को भी स्पर्श किया और भी न्यूयॉर्क इत्यादि में जो गए थे, यहाँ से कनाडा इत्यादि होते वहां पर जाने की परिकल्पनाएं हैं, वहां पर भी मैं जाऊंगा। कुछ लोग उनके जाने के बाद में निराश हो गए, इस्कॉन को छोड़ने लग गए, भगवत भक्ति भी छोड़ करके संसार में चले गए। मैं उन लोगों को भी पुनर्जीवित करने के लिए, उनको फिर से भक्ति संचार करने के लिए भी मैं आया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था जाते समय हमारे जाने के बाद में इनों की सेवा सहायता करना। मैं इनको लेकर के आया, बहुत से लोग आए किंतु हमारे मर्म को अच्छी तरह से नहीं समझ सके, हमारे विचारों को समझ नहीं सके, इसलिए आप इनों की सहायता करेंगे ऐसा सोच करके मैं, जो लोग छोड़ रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं जिनको विश्वास कम हो रहा है, बिना संतों के संग से भक्त बस भक्ति रहने पर भी खत्म हो जाएगी। बिन सत्संग न पाव ही प्राणी, साधु संग समस्त शास्त्र में कहा गया। साधु संग से ही भक्ति का जन्म होता है। भगवान की गाथाएं विश्व में प्रचारित होती हैं, भगवान के भक्तों से ही भक्ति का बीज हृदय में आता है, वही लोग रोपण करते हैं, उसी को श्रवण और कीर्तन इत्यादि के द्वारा पानी देकर के उसको बढ़ाते हैं, अन्यथा भक्ति नहीं रहेगी। इसलिए भक्तों का सम्मान भगवान से भी अधिक दिया गया। भगवान ने स्वयं कहा, मैं चीज जो चीज नहीं दे सकता भक्त लोग उसको दे देंगे, मैं जो चीज नहीं दे सकती है राधा जी उस चीज को देंगी, गोपियां दे सकेंगी। जाओ उद्धव तुम भी गोपियों के स्कूल में भर्ती हो, वहां पर पढ़ो लिखो, ढाई अक्षर का प्रेम, प उसमें र मिला हुआ और म अढ़ाई अक्षर के, किंतु विश्व की समस्त शिक्षाओं का सार उसमें भरा पड़ा है। जाओ उनसे सीखो, तुम्हें तुम जब लौट करके आएगा तुमसे मैं प्रेम की बातें, गोपियों की बातें, गोपियां कितनी उन्नत थी, उनकी भक्ति कैसी थी, जो कृष्ण भी उसके द्वारा वशीकृत हो गए पर ब्रह्म होकर के भी, जो सुधा जी उनका कान पकड़ करके उठाती बैठाती हैं, वो रोते हैं, मक्खन के लिए ललचते हैं, गोदी में बैठने के लिए ललचते हैं, कृष्ण स्वयं ब्रह्म होकर के भी, ये ब्रजवासियों की भक्ति है। असल में ब्रजवासियों की भक्ति ही है। इसलिए मैं आया जे दो चार कहीं लोगों को सुनाऊंगा और उनको भक्ति में फिर से समर्थन कराने के लिए, उनको कुछ उत्साह देने के लिए मैं अब श्रीमद् भागवत से दो चार श्लोकों को मैं आप लोगों के सामने उपस्थित करता हूं। श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतसंयुतं श्रीमद्भागवतं रसमालयं भूरहो रसिका। श्रीमद्भागवत स्वयं कृष्ण है। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो शिक्षाएं दी हैं, साधारण लोगों के लिए शिक्षाएं दी हैं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर एक वस्त्र के समान है, कपड़े के समान, कपड़ा पुराना हो जाता है उसको छोड़कर के लोग नया कपड़ा पहनते हैं, इसलिए शरीर को मैं मत समझो। संसार में रहने के लिए कर्म और ज्ञान की जरूरत है, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, इसलिए कर्मों को ऐसे करो जो भगवत भक्ति से मिला करके करो, जो तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म न हो, पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। जन्म ही दुखों का कारण है। इस संसार में कोई व्यक्ति कभी भी रुपए पैसे से, धन संपत्ति से, परिवार से कभी भी सुखी नहीं हो सकता, यह गारंटी है। कोई नहीं रह सकता सुखी, ऐसा कोई नहीं हुआ। रावण का सोने के लंका थी, हिरण्यकशिपु कभी न मरेगा, वरदान था। देवता लोग उसके घर में पानी भरते, झाड़ू लगाते, वो भी नहीं रह सका। भाई बुढ़ापा जरूर आएगी, लाख चेष्टा करो बुढ़ापा जरूर आएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, एक दिन शरीर को छोड़ देना पड़ेगा, तो शरीर अपने आप नहीं चलेगा, चार आदमी कंधे को उठा करके ले जाएंगे और उसे जला करके खा कर, यही तो शरीर की परिणति है। इस संसार से कोई भी चीज लेकर के कोई जा सकता है, कोई भी चीज, आज जो सुंदर है 50 वर्ष के बाद में झुर्रियां गालों में पड़ जाएगी, दांत निकल आएंगे, केश पक जाएंगे और शरीर यहीं पर रह जाएगा। कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हम हैं कौन, इस चीज को पहले समझो। Who am I? मैं कौन हूं? Where to go? कहां जाना है? क्या साथ में लेकर के जाना है? कोई कह सकता है जो पृथ्वी का कोई एक कण भी लेकर के चले जाएंगे? इतना परिश्रम हम कर रहे हैं? नहीं, इसी को श्रीमद् भागवत में बताया गया। क्या बताया गया? विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समस्त समयों की, अखिल समयों की जितनी भी समस्याएं हैं, भविष्य और वर्तमान की, श्रीमद् भागवत के श्रवण और उसके आदेशों को पालन करने से उन समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है, वो प्रॉब्लम दूर हो सकता है। ये बहुत दिन 5000 वर्ष पहले की पुरानी ग्रंथ नहीं है। हम लोग जितने ही इससे दूर होते चले जाते हैं उतना ही दुख। जो कि समस्या क्या है इन पर थोड़ा सा विचार करेंगे। What is the problem of this time? क्या जो की समस्या है? आज मनुष्य ने विज्ञान में इतनी उन्नति कर ली है कि चूल्हे के घर से, रसोई के घर से लेकर साइंस में, विज्ञान में, यहां तक कि मेडिकल साइंस में, आवागमन कम्युनिकेशन के विषय में ऐसी एरोप्लेने हैं जिस पर 400, 300, 500 आदमी जा सकते हैं और थोड़े ही समय में पहुंच सकते हैं। टेलीविजन इत्यादि का आविष्कार हुआ, जो यहां पर बैठे थे, इंडिया में क्रिकेट हो रहा है या उत्तरी ध्रुव में हो रहा है या दक्षिणी ध्रुव में हो रहा है, जहां आज दिन है अभी वहां पर रात है, वहां पर भी देख सकते हैं। अमेरिका में क्विंटल जी क्या प्रेसिडेंट कोई भाषण दे रहे हैं, कैसे बैठ करके भाषण दे रहे हैं, खड़े होकर के क्या बोल रहे हैं, हम यहीं से देख सकते हैं घर में बैठे हुए। क्योंकि खोपड़ी सड़ गई तो नया सिर लेकर के लगा दें, किसी का टांग टूट गया तो दूसरा टांग लगा दें। बहुत विज्ञान मिल गया, सारी पृथ्वी मुट्ठी में हुई, एक जगह एकत्रित हो गई, लोगों की भीड़ हुई। कलकत्ते में, बंबई में जब जाते हैं तो देखते हैं कितनी रास्ता उपलब्ध भी है, समस्त विश्व मानो एक जगह एकत्रित हो गया। किंतु समस्याएं पैदा कर दी इस विज्ञान ने। क्या समस्या पैदा की? स्त्री और पति को जुदा कर दिया, अलग कर दिया। जो परम पहले आज से प्रेम स्त्री और पुरुष में था कुछ दिन पहले, जो हम अपने जीवन में हम लोगों ने आज से 70 वर्ष करीब देखा, आज वो प्रेम नहीं। भारतवर्ष में तो कुछ कुछ देखा भी जाता है, पश्चात कंट्रीज में वो नहीं देखा जाता। एक बेटा नहीं कर सकता कि मैं किसका बेटा हूं, मैं कौन, हमारा फादर है। एक स्त्री एक पुरुष जीवन में 50 बार 40 बार तलाक यदि देते हैं, डाइवोर्स करते हैं, यदि स्त्री का अलग अकाउंट, पुरुष का अलग अकाउंट, लड़की का अलग अकाउंट, 5 लड़कों का अलग अकाउंट, कहां किस पर विश्वास रहा? कोई भी परस्पर विश्वास और प्रेम नहीं रहा। यह जगत की समस्या है। विज्ञान ने बहुत उन्नत कर लिया किंतु लोगों में प्रेम कैसे हम लगाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे हो, यह समस्या को नहीं सुना और बढ़ता चला जा। मनुष्य मशीन होता चला जा रहा है, लोहे की, न जाने कब स्विच में कुछ गड़बड़ी हो जाए और लट गिर करके सत्यानाश उनका हो जाए, आग लग जाएगी, ऐसे मनुष्य हो रहा है। यदि प्रेम नाम की कोई चीज नहीं रही, कुछ दोनों तक ऐसे ही चलता रहेगा तो एटम बम बनेंगे, नाइट्रोजन बम बनेंगे, किंतु प्रेम का एक स्फुलिंग भी नहीं बना सकेंगे। पहले के आत्माओं में, लोगों के हृदय में प्रेम उपकार था। आप लोगों ने दधी पी का नाम सुना होगा, क्योंकि भारतीय रक्त आप लोगों में तो जरूर होगा। देवताओं के कार्य के लिए जीवित रह करके अपने शरीर को दे दिया, उन्होंने कहा जी आपकी जीवित हड्डी की जरूरत है वज्र बनेगा, हमने कहा ठीक है। दधी और बूरा, बूरा माने चीनी लगा करके शरीर में रख करके गाय ने चाट लिया और हाड़ दे दिया। शिवी का नाम सुने होंगे, हरिचंद्र का नाम सुने होंगे, कैसे लोग उपकारी थे। आज वह ऐसा नहीं मिलेगा कहीं, कुछ एक पैसा देते हैं किसी को एक डॉलर किसी को नहीं, जरा फोटो ले लेना तो फोटे फोटे वाले को खड़ा कर देंगे, जरा फोटो हमारा ले, हम दे रहे हैं। ये सब दान खान नहीं, आत्मा के गुण सब दूर होने लग गए और राक्षसों का गुण हृदय में प्रवेश करने लगा। इसलिए परस्पर प्रीति होने प्रेम कैसे मिलेगा, ये प्रेम ही भागवत का संदेश। जो परब्रह्म साक्षात, जो सर्व कारण कारण है, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो प्रेम से सबरी के घर में कैसे भोजन कर रहे हैं उनका जूठा, ये प्रेम है। विदुरानी के घर में, विदुर नहीं थे घर में, विदुरानी थी, दुर्योधन के घर का मेवा और षडरस भोजन सब कुछ पत्या करके विदुरानी के पास में गए। वो केले के गुदे को भीतर का अंश फेंक रही है और केले के छिलके उनको खिला रही है और कृष्ण प्रेम में मतवारे होकर के खा रहे हैं। विदुर जी आए, अरे ये क्या कर रही, कृष्ण कहा जे तुमने सब गुड़ को गोबर बना दिया, बड़े प्रेम से खिला रही थी, द्वारका में मैंने इतना मीठा नहीं खाया। जो इसके हाथों में केले के छिलके में जो रसास्वाद है वो प्रेम कहां गया, ये भागवत द्वारा प्रेम कैसा। यशोदा जी खड़ी हैं और कृष्ण परब्रह्म ललक रहे हैं उनकी गोदी में चढ़ने के लिए, यशोदा जी कहते हैं नहीं खबरदार तुमको नहीं, अभी तुमको स्नान करा, अभी मिट्टी में लेट गया और गौरव में जाकर के चोरी करता है मक्खन, मैं तुझे गोदी नहीं। और कृष्ण रो रहे हैं, मिट्टी में लौट रहे हैं और नारद जी आकर के कह रहे हैं ओ यशोदा तैने कौन से पुण्य किए, कौन से तीर्थों में स्नान किया, तुमने न जाने कौन से तपस्या की, आज तीनों लोगों का कारण कारण करने वाला पर ब्रह्म सर्व कारण कारणम अनादि राधि गोविंद, आज तेरे घर में मिट्टी में लौट रहा है तुम्हारी गोदी में चढ़ने के। यशोदा जी ने उनसे बांध भी दिया, उनका नाम तब से दामोदर पर। ऐसे पर ब्रह्म को गोपियां अपने हाथ भर इसमें मट्ठा रख करके भोल जिसको कहते हैं छाछ, तुम्हें जरा नाचो तो देखें तो तुमको देंगे, और पर नाच रहे हैं कैसे, अभी नंगे हैं बिल्कुल, अद्भुत सुंदर मोर मुकुट धारण कर रहा है बंसी हाथ में, इतने अद्भुत सुंदर जगत उनको देख करके मत मारा हो जाए। और वो कानों में हाथ रख करके एक हाथ ऐसे करके आलाप लेने लगे, उन्होंने थोड़ा सा छाछ दे दिया, एक लड्डू दे दिया। अरे गोपियों को तो बात सुनो, ऐसे प्रेम करती हैं जब तीन सौ कहते हैं हमारे घर से तू निकल जा, हमारे कुंजों से तुम निकल जा, तू झूठा है धूर्त है लबार है, कोई कर सकता है भगवान को ऐसा, किसी को करने का साहस नहीं, तो गोपियों का प्रेम है। कृष्ण ललकते हैं इसको सुनने के लिए, आकांक्षा करते हैं, ब्रह्मा का स्तव सुनना नहीं चाहते, ये क्या चीज है, ये प्रेम है। इसी को प्रेम को देने के लिए सुखदेव और स्वामी जी अवतरित हुए। सुखदेव कैसे, संसार से मोह माया ममता सब दूर हो गई, कोई भी ममता नहीं, जन्म से ही घर से निकले और पीछे पीछे ब्याज जा रहे हैं। उस समय में मैंने वंदना में की श्लोक की, वेद व्यास जी नारायण के अवतार हैं और वो करें पुत्र पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, और सुखदेव गोस्वामी का इस पर कोई ध्यान नहीं है, वन के पेड़ कह रहे हैं प्रतिध्वनि के रूप में हा पुत्र क्या कर रहा है, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, पहले ये समझो जो मैं कौन हूं। इसको कहते हैं मोह, मोह ए वही कारण। ऐसे परम त्यागी वितराग महात्मा परीक्षित महाराज की सेवा में आए हुए हैं, वहां पर 88,000 ऋषि लोग भारत वर्ष के बैठे हैं। जो किसी को कहते हैं मर जाए तो मर जाए, और कहेंगे जीवित हो जाए तो जीवित होकर के खड़े हो जाएंगे, जो कुछ कहेंगे ऐसे ही हो जाएगा। तो सभा में अगस्त भी आए हैं जो कि समुद्र को सब पानी लेकर के पी गए, गौतम नव जोगेंद्र कभी हभी अंतरिक्ष पलायन इत्यादि जितने भी ऋषि थे, यहाँ तक कि नारद जी भी आए, पराशर आए, व्यास जी आए उस सभा में जिन्होंने भागवत को लिखा वो भी आए, प्रहलाद जैसे सुखदेव गोस्वामी को बैठाया। परीक्षित महाराज जी को 7 दिन में मरना है, सांप काटने वाला है ब्रह्म सांप, छोटे से 5 वर्ष के लड़के ने उनको सांप दे दिया, सांप सातवें दिन जो हमारे पिताजी के गले में पहना रहा है सर वही सातवें दिन तुमको काटेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता। हाथ में पानी लिया, लेकर के पड़ा और फेंक दिया राजे से सातवें दिन। क्यों, दोष क्या था? ऋषि के गले में सांप आई, अरे क्षत्रियों का और सब लोगों का कर्तव्य है परम संतों का आदर करे, और तुमने ये आदर किया, तुमने समझा कि मैं घर का मालिक हो गया, पृथ्वी का मालिक हो गया, तुम सबको कंट्रोल करने वाला है, अभी तुमको दंड देता हूं 5 वर्ष का लड़का तुमको, और पानी उठा करके अभी संपात कर दिया। ब्राह्मणों का कितना बल है, तपस्या में कितना बल है, भजन में कितना बल है, देखो तो जरा। समझता है कि जैसे ये ऋषि लोग कपड़े पहनते नहीं है और ध्यान बैठे हैं, जगत का कोई उपकार नहीं करते, किंतु यही लोग उपकार करते हैं समझो। अब उनको पता लगा परीक्षित महाराज जी को, और वो राजपाट छोड़ दिया गंगा के किनारे, यहां आज हस्तिनापुर है उसी के पास में, और जाकर के बैठे, खाना पीना छोड़ दिया। इतने में समस्त ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हो गए, उन्होंने प्रश्न किया हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित जी ने, ये ऋषि आप कृपा करके हमारे 2 प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए, जो अभी तुरंत मरने वाले हैं, अभी 1-2 मिनटों में, 8 घंटे में, 1 घंटे में मरने वाले हैं, उनका क्या कर सकते हैं, ने क्या करना चाहिए, और जो आज न कल न परसों न बरसों मरेंगे जरूर, उनके लिए क्या करते हैं? आप लोग भी इस चीज को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करें, जो अभी तुरंत मरने वाले बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो आज न कल न परसों मरेंगे ही गारंटी है मरेंगे जरूर, यदि जगत में भगवान सत्य हैं कि नहीं है ये तो पीछे की बात, किंतु जगत में मरना जरूर है, जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मित्र से। नहीं है यह शरीर का हमने मृत्यु को, इसलिए आज जो मरेगा क्या कर्तव्य, आज जो बहुत दिनों के बाद में मरेंगे उनका क्या कर्तव्य। उन्होंने कहा आज जो मरने वाला है उसको कृष्ण कृष्ण राम राम कान में सुनाओ बस, यदि बोल सकता है तो वो कहे, साथ ही साथ में उसके मृत्यु से भी और कभी भी मैया के गर्भ में नहीं आएगा, उसे दुख नहीं होगा कभी भी नहीं, सदा के लिए सारे दुख नहीं आएगा, वो परम मुक्त हो जाएगा, भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। और जो उसको अभी समय है भागवती कथा सुने, भगवान का कथाओं को सुने, भगवान का भजन करे, और अपने जीविका के लिए जो अर्जन करना है वो उसको भी करे, किंतु भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करे और क्रमशः भगवान का प्रति भजन करे। इसी को हम थोड़ा और विस्तृत करके प्रहलाद महाराज जी को उपाख्यान से आप लोगों को बतला रहे हैं। एक दिन में सारी भागवत को बतलाना बड़ा भारी कठिन है, किंतु तत्व से जान करके यदि श्रीमद् भागवत के एक अक्षर को भी हमने समझा और भगवान का नाम किया, उनकी कथाओं को सुना, या प्रतिदिन अपने जीवन चर्चा से कुछ समय निकाल करके 2-4-10 मिनट ये तो अंततः हम कह सकते हैं प्रभु मैं तुम्हारा हूं, आप भटकट में निवास करने वाले हैं, ये तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, ऐसी प्रार्थना हम लोगों को जरूर करना चाहिए। यदि सुखी और शांति से रहना चाहते हैं संसार में भगवान का भजन मिला करके अपने कर्मों को कीजिए, अन्यथा सुख नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज जी और हिरण्यकश्यप कथा इसमें बदलाई गई। हिरण्यकश्यप माने होता है, इसका अर्थ होता है, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं उनका कुछ न कुछ जरूर अर्थ होता है, और भाषाओं में ऐसा नहीं है। बहुत से नाम ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, किंतु संस्कृत में जितने हैं सब उन सब के अर्थ होते हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने होता है सोना स्वर्ण। जो ये समझते हैं कि अर्थ के द्वारा ही हम जगत में सुखी रह सकते हैं उनको कहते हैं हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष। मैं समझता हूं कि आज जगत में ये इसी की संख्या अधिक है जो समझते हैं कि यदि रुपया पैसा नहीं है, यदि डॉलर नहीं है, हम सुखी नहीं है। इधर जो कुछ भी हम करते हैं वो ये पैसा के लिए करते हैं, किंतु जो इसको जानते हैं इसे भी अधिक महत्व भजन को देते हैं। ये आत्मा का क्या है इसको कैसे हम समझ, जिस समय हिरण्यकश्यप का ये पुत्र थे प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के हुए, तो उन्होंने गोदी ले लिया और गोदी लेकर के चुंबन किया बच्चे का और उससे पूछा, बेटा तुमको हो गए 1 वर्ष पढ़ने दे वे स्कूल में, यार बन के स्कूल फॉर 5 ईयर। हिरण्यकश्यप आस्क हिज सन प्रहलाद महाराज, तुमने स्कूल में गया, तुम गए और वहां पर तुमने पढ़ा, ये बतलाओ जो वहां पर तुमको पढ़ने में कौन सी अच्छी शिक्षा मिली, वो हम तुमको क्या अच्छा लगा तुम बतलाओ। और मैं स्कूल में गया और वहां पर हमको यही बात सबसे अच्छी लगी, तब साधु मन ने असुर जबर जदे ही ना, मैंने मुझको यही शिक्षा मिली, पिताजी उनको असुर कह रहे हैं, असुर मुझे यही शिक्षा मिली, तब साधु मन ने असुर वर्ज्य दे ही नाम, सदा समोदिग्न धिया असद गृहात गृह अंधकोपम मनम गतो हरिमाश। जो संसार को समझे कि मैं कौन हूं और समझ करके ये संसार निसार है, ये भगवान का भजन करने के लिए ही, आत्मा का अनुसंधान करने के लिए, ये आत्मा क्या है और इसका क्या कर्तव्य है, इसके लिए आया। हित्वात्म पापम, हित्वात्म पापम गृहम अंधकूपम, ये घर कैसा है, परिवार संसार कैसा है, एक अंधे कुएं की भांति है, कैसे कैसा अंधा, जरा समझिए, एक कोई व्यक्ति जंगल की तरफ में जा रहा था, वन में जा रहा था, जबकि थोड़ा सा प्रवेश किया तो देखा एक बाघ बड़ा भयानक गर्जन करते हुए उसके ऊपर में दौड़ा मारने के लिए, वह प्राण बचाने के लिए भागा और जाकर के देखा कहां जाऊं, बड़ी बड़ी वृक्ष उस पर चढ़ नहीं सकता जल्दी से, जब वो एक कुएं के पास में पहुंचा जो कि कुआं पुराना था, टूट फूट करके खंडहर हो गया था, उसका पानी भी सूख गया था और उसके ऊपर में पीपल के छोटे छोटे पेड़ या और दूसरे पेड़ उसमें सूख गए, जब उसकी दो डाली पकड़ी पीपल की और झट नीचे झूल गया, झूल करके नीचे देखा कुछ सांप काले काले मोटे मोटे बड़े विशाल उसके तरफ में देख करके फांस फांस ऐसे कर रहे, यही यदि वो नीचे गया तो उसको काटेंगे, प्राण सुख गए दर्द मारे, ऊपर में वो कुएं के ऊपर में आ गया बाघ और वहीं से जोर से गर्जन करने लगा और पंजे को उसके ऊपर में मारने लगा, किंतु वो थोड़ा सा नीचे थे इसलिए गया नहीं। ये दोनों डालों को पकड़ करके झूल रहा। इतने में देखा क्या, कुएं के अंदर से दो चूहे आए, एक काला एक सफेद, और उसको काटने लगे कुतरने लगे। यदि झूलता है तभी मरता है, वो अभी काट लेंगे और वो नीचे जाएगा, और यदि ऊपर आता है तो बाघ खा जाएगा, नीचे जाता है सांप काटेगा। चारों तरफ मृत्यु मंडरा रही, कोई भी रक्षा का उपाय नहीं। इतने में उसने देखा एक ऊपर वाली टहनी में, छोटी सी टहनी में, डाल में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, और उस छत्ते से मधु टपक रहा है सामने से ही। उसने जीभ को बढ़ाया, मुख को बढ़ा करके उसका एक बिंदु अपने जीभ पर लिया। क्या मधु, कितना मीठा, भूल गया ऊपर में बाघ, नीचे में सांप, अभी वो नीचे गिरेगा, भूल गया। ये रूपक दिया भागवत में बतलाया क्या, कुआं ये भव सागर है, अथाह अनंत कुएं के समान, और उसमें जो दो वृक्ष हैं ये हमारे कर्म से अच्छे पुण्य कर्म और पाप कर्मों के फल हैं। हम उसी को पकड़ करके संसार में, कभी अच्छा फल और कभी बुरा। इसको काट रहे हैं कौन, दो चूहे, काला रात और सफेद वाला चूहा दिन, तीन और आठ एक एक करके चले जा रहे हैं, और हमारी आयु कम सी चली जा रही है। कितनी उम्र हुई, 50 वर्ष, 50 वर्ष की, अरे 50 वर्ष तो गया, कितनी आयु हुई, 100 वर्ष की मैं हूं, अरे 100 वर्ष तेरा गया, अब कितने दिन की, ये देखो। तो आयु को काट रहा है वो क्या, सफेद चूहा काला चूहा, एक न एक दिन ये मरे, न जाने कब मृत्यु हो जाए, कोई ठीक नहीं। अभी मैं दिल्ली आ रहा था मथुरा से, वृंदावन से, देखा अभी विवाह करके एक वर अपनी अपनी स्त्री को लेकर के अपने पिता माता और भाई और साला साली को लेकर के जा रहा था, और वो कहीं भिड़ंत हो गई गाड़ियों से, चकनाचूर गाड़ी हो गई, कोई भी नहीं बचा संवाद देने के लिए, यही मर गए न क्या। ऐसी घटनाएं कितनी होती हैं, इसलिए कोई ठीक नहीं। इसलिए कह रहे हैं बूंद क्या है, जो मधु का आ रहा है वो क्या है। कभी बेटा विवाह नहीं हुआ था अभी, और विवाह हुआ तो यही विवाह हुआ तो कितना सुंदर कितना अच्छा, और 2 दिन के बाद में डाइवोर्स हो गया तो बड़ा दुखी हो गया। अभी प्रेसिडेंट बन गए या प्रधानमंत्री गए, बड़ा बड़ा अच्छा हुआ, और 2 दिन के बाद में जब उतर गए तो बहुत दुखी। बेटे का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, ये सब मधुर बूंदे हैं जो एक एक बूंद तपकती है, यही संसार। इसको छोड़ करके स्मरण से भी भगवान का भजन करना, यही सब बुद्धिमान और लोगों का कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी का ये उपाख्यान का ये प्रारंभ किया। प्रहलाद महाराज ने कहा बच्चों को बुला करके, देखो बचपन से ही भगवान का भजन करना उचित है, क्यों। उन लोगों ने पूछा, बालकों ने, छोटे छोटे जब भी बालक थे, उन्होंने पूछा कि क्यों भगवान क्या, उसको तो देखा नहीं, हमारा तो जन्म माता पिता से होता है, भगवान तो कौन देखा। कहे नहीं, जो तुम्हारे माता पिता का भी जन्म दिए हैं, जो तुम्हारे माता पिता के भी माता पिता के माता पिता के भी मूल जन्मदाता वो हैं, जिन्होंने दिमाग दिया, इंटेलिजेंस दिया, जो हमारे कर्मों का फल सब देते हैं। एक आदमी बिना प्रयास के ही पढ़ा लिखा नहीं, और हमारे भारतवर्ष में समझिए जो डालमिया जी हैं, टाटा बिरला, उनके घर में जन्म ले लिया। कैसे ले लिया, जन्म से ही कोई अंधा हो गया, क्यों हो गया, कोई लंगड़ा होकर के आ गया, ये कैसे? ये सब कर्मों के फल हैं। इसे इस जन्म में अच्छा कर्म करो, ये अच्छा शरीर होकर के आए, लोगों का उपकार करो, आत्मा को समझो। तो बच्चों को उन्होंने कहा बचपन से करो। क्यों? अरे भाई कल कोई ठीक नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि मैं 25 वर्ष का होऊंगा डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा या कोई अच्छा बन जाऊंगा, इसके बाद में भजन करूंगा। अरे कहा जिनसे यदि मर गया तो इसलिए बचपन से करो, अपना काम भी करो, तो अपना काम भी करते जाओ, 2 मिनट भगवान के भजन में लगाओ। दूसरी बात, जैसे बिना दुख किसी कारण के ही आ जाता है, कोई नहीं चाहता विश्व में जब हमको बुढ़ापा आए और हमको कोई दुख आए। कोई ऐसा जगत में नहीं है ये कह सकता है कि हमको रोग नहीं है, हमको कोई दुख नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर। कोई ना कोई रोग होगा, कोई ना कोई दुख होगा, बिना बुलाए ही दुख आता है। वैसे यदि सुख होगा तो भाई बिना बुलाया आएगा, इसलिए कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन करो। 100 वर्ष की आयु मान लिया, आजकल 100 वर्ष की आयु नहीं होती, तभी मान लो 50 वर्ष सोने में चला गया, रह गया 50 वर्ष में, लिखने पढ़ने में भी ये 20 वर्ष गया, और उधर का 20 से 80 वर्ष से उम्र से लेकर के 100 वर्ष की उम्र 20 वर्ष कुछ नहीं कर सकते, कमर सीधी नहीं होगी, ओल्ड हाउस में जाकर करेंगे। भारतवर्ष में होते तो बच्चों के पास में रहते, बड़ी मीठी मीठी बातें सुनते, उनको बुलाते, उनको कुछ शिक्षा देते, आदर भी होता। उसमें स्त्री भी नहीं आई, या तो स्त्री मर गई या पति केवल मर गए, कोई पानी देने वाला नहीं, पेपर पढ़ो बस, और कुछ कोई काम नहीं। बुढ़ापा, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते, 20 अभी 40 और निकाला, 10 वर्ष रह गया, उसमें विवाह करना है, धन कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना करना है, समय कहां? इसलिए बचपन से भगवान का भजन। एक ऋषि थे हमारे यहां, उनका नाम था अष्टावक्र। एक समय हिमालय से निकल करके महाराज जनक के दरबार में गए। जब वहां पर पहुंचे, राजा जनक का यह नियम था कि कोई भी आदमी आए, ब्राह्मण आए, योगी आए, तपस्वी आए, भक्त आए, वैष्णव आए, उनको सीधे हमारे यहां ले आना। उसमें बड़ी सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, यज्ञवल्क्य इत्यादि ऋषि लोग वहां पर थे, उनको लाया गया दरबार में। उनको देख करके सारे सभासद जितने थे, बड़े बड़े विद्वान लोग, सभी लोग हंसने लगे। थे बड़े काले कलू थे, पैर फटे हुए, देवाय होती है, यहां तो नहीं होता, भारत वर्ष में लोग खाली पैर चलते हैं, उनको हो जाता है, पैर फट जा, धूल में लगे हुए, और अंग 8 अंग से टेढ़े, मुख टेढ़ा, यहां पर कुबड़, पैर टेढ़े, लटिया के भरोसे किस प्रकार से आए। उनको देख करके लोगों ने हंस दिया, देखो तो कितना ढीठ है, कितना निडर है, निर्भय है, ये सभा में आ गया जहां पर बड़े बड़े विद्वान हैं, राजा का सभा, कितने ठाट से लोग यहां रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो इन्होंने भी खड़े होकर के किसी प्रकार से, और ये भी जग से ठठा ठठा करके हंसने लगे। ठठा करके हंसना जानते हैं ना, जरा जोर से हंसना, हो करके हंसने लगे। महाराज जनक जी उठे, बोले जैसे आप किस लिए हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी आप लोग किस लिए हंस रहे हैं? तो आपके अंगों को टेढ़ा देख करके हंस रहे हैं। तो मैं ये देख करके हंस रहा हूं कि मैं हिमालय से आया बड़े बड़े विद्वानों को, महर्षियों को, ब्रह्मज्ञानियों को दर्शन करने के लिए। सुना था जी राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ऋषि लोग हैं, इसलिए आया। किंतु मैंने देखा सब चमार मोची बैठे हुए हैं, जो जूते सिलाई करते हैं, चमड़े की। मैंने क्यों देखा? आप लोग देखते हैं कि ये चमड़ा कैसा है, काला है, कुबड़ा है, ऊंचा नीचा है, ये तो चमार मोचियों का काम है, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं, ये आत्मा कितना उन्नत है, भगवान का ज्ञान कितना है, ब्रह्म ज्ञान कितना है, ये आपको पता नहीं। इसलिए सब मोची बैठे हुए यहां पर, हमारे आने का जरूरत क्या हुआ, मैं बहुत कष्ट करके आया। क्या तात्पर्य है,
मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि आत्मा कौन,
कहां से आया, क्यों आया, कैसे फिर हमको इस जगत में नहीं आकर के एक ऐसे लोक में जाना है जहां पर जन्म मरण नहीं है, दुख नहीं है, शाश्वत नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है, प्रेम की बाढ़ बढ़ रही है, प्रेम की लहरियां हैं। बोलो क्या है, बैकुंठ से भी ऊपर बोलो वृंदावन है, वहां पर प्रेम सदा है, कृष्ण की लीलाएं वहां पर चलती हैं अनंत काल से। यदि एक व्यक्ति उसमें पहुंच जाए तो फिर उसको जन्म नहीं, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम। प्रहलाद महाराज जी बच्चों को शिक्षा देते देते और इधर में सुखदेव गोस्वामी उनको देते देते ब्रज की लीला के तरफ में गए, उन्होंने बतलाया देखो यदि सुख और शांति चाहते हो तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो है नंद नंदन है, राधा कांत है, उनको भगवत्ता की चरम सीमा समझो, मुझसे बढ़कर क्या और कोई भगवत्ता नहीं है। राम और ये सब क्या है, वही कृष्ण ही राम इत्यादि होकर के आए हैं, शंकर इत्यादि क्या है, उनके वो सेवक हैं, इस रूप में समझो और समझ करके राधा कृष्ण का ही भजन करो, सबसे सर्वोत्तम भाव। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना वधु वधु वर्गे न जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्प्रादो। हमारा आराध्य कौन है, ब्रजेंद्र नंदन। क्यों, आप राम का भजन करना चाहेंगे, वही कृष्ण ही राम के रूप में आए हैं, मर्यादा स्थापन करने के लिए आए हैं जगत में, वो कृष्ण से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, किंतु मर्यादा स्थापन करने के लिए वो कुछ नीतियां हैं उनको मानना पड़ेगा। रामचंद्र जी आकर के नीतियों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे सीता जी को प्रत्याग करना पड़े, लक्ष्मण जी को भी प्रत्याग करना पड़ेगा, उस नीतियों को पालन करने के लिए, मर्यादा को पालन करने के लिए सीता जी का प्रत्याग कर दिया। सीता जी का दोष क्या था, कोई कह सकता है जो सीता जी का कोई दोष था, असहाय अवस्था में यदि इच्छा के विपरीत नहीं किसी ने उनको पकड़ लिया तो इसमें दोष क्या है, राम ने क्यों प्रत्याग किया, राम ने तो प्रत्याग नहीं किया किंतु लोगों को दिखलाने के लिए ऊपर से ऐसा किया, मर्यादा की रक्षा करने के लिए। और इधर कृष्ण का क्या है, लाख लोग कहते रह जाएं, जो जो जिस रूप में आएगा उसी को उस रूप में ग्रहण कर लेंगे। राम को जनकपुर की स्त्रियों ने कहा, जो अभी बालिकाएं थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, ये आपका इतना सुंदर है, सीता जी से विवाह किया, हम तो उनकी सहेलियां, हम भी तुमसे विवाह करना चाहते। उन्होंने मन कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब मैं कृष्ण होकर के आऊंगा तब तुम लोग आना गोपी बन करके, उस समय तुम लोगों को ग्रहण करूंगा। राम जब जन्म लिए वही कृष्ण ही राम के रूप में जन्म लेते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और कौशल्या जी उनको स्तव स्तुति करती है, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उनको स्तव स्तुति करने लगी। और इधर में देखिए वृंदावन में कृष्ण अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखलाया, यशोदा जी ने कहा जैसे इसको किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, इस पर आंख किसी की लग गई, नजर लग गई, ये हमारे बेटा भगवान नहीं, कभी उसकी स्तव स्तुति नहीं की, बल्कि गायों को मंगाया, उसका गोबर और मूत्र लेकर के काली गाय के पूंछ में लगा करके और उनको झड़वाया। ये गोपियों का प्रेम, इसलिए उन्होंने बतलाया जी आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना वधु वधु वर्गे न जा कल्पिता। गोपियों की जो कृष्ण की आराधना है, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, यही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए वो कहते हैं जो गोपियों का प्रेम जो है कृष्ण के प्रति, यही सबसे उन्नत। कैसा प्रेम था, किसको समझा रहे हैं, कुछ कैसा इसी को बता। कृष्ण वृंदावन से मथुरा में आए हैं, बड़ी भारी सभा लगी। कंस सभा के ऊपर में एक बड़े आसन पर बैठा, चारों ओर इत्यादि बड़े बड़े वीर अखाड़े में हैं, दंगल होने जा रहा। कृष्ण को और बलदेव को निमंत्रण दिया गया। कृष्ण छोटे से अभी बच्चे हैं, कितने 10 वर्ष के बच्चे, बलराम जी 1 वर्ष बड़े करीब करीब, या 10 दिन बड़े, 16 दिन, 8 दिन बड़े। द्रोण भैया वहां पर खड़े, एक श्याम एक गौ, छोटे छोटे भी बच्चे किशोर हैं, चारण मस्तक पहाड़ जैसे बड़े बड़े पलवान, वो कृष्ण को बुला रहे हैं, आओ जल्दी से हम लोग कंस को प्रसन्न करेंगे। कृष्ण ने कहा कि भैया हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे समान यदि कोई हो 10 वर्ष 15 वर्ष का बच्चा तो हमारे साथ में लड़ सकता है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से कह लो। किंतु उन्होंने जबरदस्ती पकड़ लिया। उस समय में वहां की जो स्त्रियां थी जादुओं की, वो करी इस सभा में पाप समाया है, नहीं तो छोटे बच्चे के साथ में इतने बड़े पहलवानों को लगाकर इनको मरवाया जा रहा है, ये तो षड्यंत्र हो रहा है, कृष्ण को मारना चाहते हैं बलदेव। तो स्त्रियां करेंगे, सज्जन लोग इस सभा में नहीं बैठ सकते, उनको पाप स्पर्श करेगा। कृष्ण कितने सुंदर और बलदेव जी इतने सुंदर, वही वहां पर बतला रही हैं, पुण्यावत ब्रज भुवो जदैन लिंग, गुणा पुराण पुरुषो बल चित्र माल्य गापाल अंश बल कड़ियंश बेड़ विक्रियांश गृत रमा। हम लोग कितनी दुर्भागा हैं जो आज कृष्ण को देख रही हैं, ये पकड़ करके मारना चाहते हैं, कहां ये वृंदावन की भूमि में, यहां पर गोपियां उनको स्नेह करती हैं, ये मैं ये समझता हूं कि वृंदावन ही धन्य है पृथ्वी भर में, और इस वृंदावन में वृंदावन क्यों धन्य है, जहां पर की गोपियां हैं गोप लोग हैं इसलिए धन्य है। क्यों धन्य है गोपियां, कृष्ण परब्रह्म होते हुए भी मनुष्य के रूप में मालूम होता है, जी छिपे हुए हैं ये परब्रह्म है, गले में वैजयंती माला, शरीर श्याम और उस पर बिजली कड़क जैसे होती है पीताम्बर, वेणु बजा रहे हैं, लाखों लाखों गायों को इधर से उधर लेकर के चरा रहे हैं, ये गाय क्या है, वेद की ऋचाएं हैं। ऐसे गोपियों को, गोपियों ने कौन सा नजर ने तप किया था जैसे कृष्ण को देखा, जिन पर कोटि कोटि कामदेव को भी वारण किया जा सकता है, न्योछावर किया जा सकता है, आए कृष्ण का कैसा रूप, और ये गोपियां ही समझती हैं आस्वादन करती हैं, ये कंस को देखो उनको मारने जा रहा है। यदि हम लोग भी गोपी होती जानती ये कौन सी तपस्या करके ये गोपी हुई और कृष्ण की इतने प्रेम से सेवा करती हैं, तो हम लोग भी वो तपस्या करते हैं। जादो होने वहन ने मथलो पलेप प्रेंखना को उखन मार जना दो गायंती चैनम अरुरक्त धियो अश्रु कंठा धन्या ब्रजस्य कुरुक्रम चित्त जाना। ये गोपियां कैसी हैं, कृष्ण को अपने मनोरथ पर चढ़ा रखी हैं, सब समय कृष्ण 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 की चिंता। कोई गोपी दोहने गायों का दोहन कर रही किंतु कर क्या रही है, गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो
गोविंद
वो मुसल उठा करके कूट रही हैं, गेहूं, कोई चक्की पीस रही है, कोई सुख पक्षी को पढ़ा रही है, क्या पढ़ाती है और क्या कहती है?
गोविंद दामो धर्म आधवेति, गोविंद दामो धर्म आधवेति, गोविंद दामो धर्म।
कोई झाड़ू लगा रही है घर में, झाड़ू लगा रही है, किंतु मन पर तो कृष्ण चढ़े हुए हैं। जसोदा सुत बाली के लिए, जसोदा जी के लड़के जो कृष्ण हैं, उनके जो छोटे समय की जो लीलाएं हैं उनका गायन करती हुई उनको स्मरण करती हैं। क्या कहती हैं?
गोविंद
कोई रसोई पका रही है, रसोई पका रही, वो तवे पर रोटी रख दिया और भूल गई, और वो क्या कर रही?
गोविंद नाम
कौन कह रहा है ये सब बातें? मथुरा में बैठी हुई स्त्रियां करें, यहाँ गोपियों का भाग्य देखो, कोई सिर पर मटकी में दही मक्खन लेकर के कृष्ण को देने जा रही है। करें ये मक्खन लो मक्खन लो, तो मक्खन लेना भूल गई, क्या करेगी? हाथ यहाँ पर मटकी रखी, वो गिर गई, प्रेम के मारे आंखों की आंसू बह रही है, बावरी हो गई, उसके अंचल नीचे गिरने करके लटकने लगे, किंतु वो बोल रही है
गोविंद दाओ दुखले संग घंटतंग्य संघयंतो मुसल गायन्ति गोप्य जनतानुरा
एक बच्चा है रो रहा है, क्या 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 कर रहा, रो रहा बच्चा छोटा सा, उसको पलंग में सुला दिया, पलने में, पलना जानते हैं ना, पल्ले में झुला दिया और उसको थपथपी दे रही है, बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो सो जाओ नहीं कहती,
गोविंद भजन
में क्या कष्ट है, क्या कष्ट है? आप जा रहे हैं कार में और वहां पर चिंता करें, वहां जाऊंगा ये करूंगा ये करूंगा, ये मकान बहुत सा अच्छा बनाऊंगा, बच्चों को ऐसा करूंगा, और इतने में कहीं कुछ कर दो, मन तो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, उसको कुछ काम तो दो, देखो जैसे कैसे काम में लग जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, अरे जो तुम्हारा काम करने तो करेगा ही, समय क्यों बर्बाद कर रहा है? चलते जा रहे हैं,
गोविंद
कोई घर में गोबर से लीप रही है, आजकल लीपने का कोई प्रश्न ही नहीं, यदि कहा गया मूसल उठा लाओ तो मूसल भी नहीं उठे, शायद 5-10 किलो का, जरा चक्की चलाओ कोई जरूरत नहीं है, खरीद लाओ बाहर से दुकान से पीसा हुआ, न जाने क्या चीज है, नहीं है कोई ठीक नहीं, ले आओ, ब्लड प्रेशर हो रहा है, 5 वर्ष की लड़की को 10 वर्ष की लड़कियों को लड़कों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, उठ नहीं सकते बैठ नहीं सकते, पहले ऐसा सब था, काम का कर रहे हैं और फिर गोविंद दामोदर माधवी जी कर, तो हम लोग ऐसे चलते फिरते उठते बैठते छींक लेते समय भी, जम्भाई लेते हुए भी, अरे टट्टी जाओ वहां पर भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता? अंत संति दर दर की बातें चिंता करेगा और ये नहीं कर सकता।
भगवान का भजन करना कठिन नहीं है, बिल्कुल सहज है,
किंतु ऐसा गुरु बतलाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए जो उनको बतलाए। ब्रज में ऐसे ही, ब्रज में हम जहां रहते हैं वहां रात में चौकीदार रहते हैं, वो कहते हैं राधे 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 राधे, वहां की कोयल क्या करती है, कुहकती है तो कहती है राधे राधे। वहां को कोई एक आदमी देखेंगे ना तो प्रणाम, ऐसे प्रणाम में ऐसा नहीं कहेंगे राधे राधे जय श्री राधे। जरा जाएंगे देखें, बरसाना में जाइए, नंदगांव में जाइए, सब लोग ऐसे। अभी भी कुछ संस्कृति बची हुई है, न जाने कितने दिन तक बचेगी मैं नहीं कह सकता, किंतु धर्म सनातन है ना, इसलिए ये कभी भी लुप्त नहीं होने की। इसे आप लोग भी अपनी संस्कृति मर्यादा इत्यादि को जरूर रखेंगे, कभी भूल मत जाइएगा भारतीय संस्कृति को, कृष्ण का भजन करना, राम का भजन करना, ये आत्मा अजर अमर है। ऐसा ही दिन नहीं रहेगा जैसा अभी दिन देख रहे हैं, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, वृद्ध होना पड़ेगा, एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही समय रहते हुए इसको चेतो। इसलिए करती हैं गोपियां, कृष्ण आ रहे हैं गोचारण करने के लिए जा रहे हैं घर से, परब्रह्म। आप लोग ऐसा मत समझेंगे हम लोग बहुत विद्वान आदमी और सब कुछ हो गए हैं, बहुत विद्वान परीक्षित महाराज जी हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, आज सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग घर बार छोड़ करके, व्यास जैसे लोग, करोड़ों करोड़ों ऋषि लोग, भारतीय लोग इस चीज को तथ्य को समझ कर और कृष्ण का भजन करते हैं। हम लोग भी इस संसार में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, हाँ आप लोगों जैसा धनी तो नहीं था, किंतु समझा उस समय में सबको छोड़ करके भगवान का भजन कर, इसलिए उपलब्धि कर लेंगे है कि नहीं कुछ इसमें, देखा जी इसमें तो कितना आनंद है इस गोविंद दामोदर माधवेती में कृष्ण के नाम में, विशेष करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी भगवान का नाम करो। एक था तेली, तेली जानते हैं हमारे भारत वर्ष में, ये सूत्रों में एक तेली होते हैं जो तेल फिरते हैं, उसका एक बैल था, उसको ऐसे लगा करके और कोल्हू में लगा दिया। आजकल के लोग तो कोल्हू भी नहीं जानेंगे ये कैसे, आजकल तो कारखाने हो गए हैं, बैल से वो चलता था, उसमें शुद्ध सरसों का तेल या कोई चीज का तेल आता था, थोड़ा सा लगाओ ना एकदम चारों तरफ में सुगंध फैल जाता था, तो वो तेली दिन भर तेल कर। नारद जी आए बोले जी, अरे बेटा बदमाश तू भगवान का नाम नहीं करता, स्वामी जी हमको समय कहा, दिन भर कोल्हू चलाता हूं मुझे फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं, अच्छा तुम चट्टी जाता है तो क्या करता है, तो कुछ नहीं उस समय कर सकता है, कहां कर सकता, अच्छा तो जाओ करो। वो जब चट्टी शाम को रात में जाने लगा तो वहां पर चट्टी करते समय में राम राम कहा, किंतु हनुमान जी का नियम है जहां जाएंगे हनुमान जी ना, जहां पर भगवान का नाम होगा भगवान की कथा होगी वो सबसे पहले पहुंचेंगे, हम उनको नहीं समझेंगे किंतु जरूर पहुंचेंगे। तो जब उसने राम राम करना आरंभ किया पहुंच गए, कह जी बड़ाई से तेली, ये तो अपवित्र होकर के चट्टी करते समय भगवान का नाम करता है, स्नान करके पवित्र होकर के नहीं करता, चतर बस एक लात मारा दो उससे मारा हट्टी उसी और मान सबको पीस दे, रावण को मारा तो वो गिर गया, गिर करके भूमि में गिर करके मिट्टी में मुख में लग गई, कुंभकर्ण जैसे ऐसे आदमी को मारा तो वो गिर गया, किंतु ये तो गिरा भी नहीं कुछ नहीं हुआ, वो तो राम राम करता रहा। हनुमान कहा जैसे ये कैसी बात है, अच्छा बड़े आश्चर्य की बात है इसको मारा इसको कुछ नहीं हुआ। सोचते सोचते वो गए अयोध्या में राम के पास में, शाम के समय में रामचंद्र जी के भीतर से आवाज आई ऊह ऊह, वो कर रहे हैं क्या बात हो, कोई कष्ट हो रहा है। भीतर में गए पूछा राम से, प्रभु आज आप वो हो क्या 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 कहीं दर्द हो रहा है?
दर्द हो
तो पूछता है, 1 लाख हमको मारा तूने
और पूछता है कि दर्द?
अरे मैंने कब आपको प्रभु मारा? अरे तू नहीं जानता है कि राम और राम का नाम, कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों एक है, दोनों में कोई भेद नहीं, मैं खुद ही हूं राम। अतः ये लात उसको नहीं लगा, ये मेरे ऊपर में लगा, मेरी कमर कमर तूने तोड़ दी पैरों से। अरे प्रभु आज से कान मैटता हूं, आज से कभी भी किसी को नहीं कहूंगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सब समय कभी भी खींचते हुए भी पैर फिसल जाए उस समय गिरते हुए भगवान का नाम ले अजामिल की तरफ में फिर जन्म मरण से अतीत होकर के भगवान की तरफ, विशेष करके कृष्ण नाम, विशेष करके कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाएं यदि समय होता तो मैं सुनाता उसमें से कुछ, यदि भविष्य कभी आऊं तो आप लोगों को सुनाऊंगा ये गोपियों का चरित्र कैसा, उसके कैसे बसीभूत हो गए राज, जैसे कि गोपियों का विरह, उद्धव को उन्होंने कैसी शिक्षाएं दी, वे सब का विषय वर्णन करता। तो एक दिन में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैंने मुखबंद की जो मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, कभी भूलिए मत। जिस मनुष्य ने मनुष्य जन्म दे करके और आत्मा को नहीं समझा जे मैं कौन हूं, समझ रहे हैं कि ये है स्त्री है कि पुरुष है कि ये है, दोनों के बाद में बनना। इसलिए मनुष्य जीवन में ही हम लोग समझ सकते हैं, किसी दूसरे जीवन में नहीं समझ सकते। यही समस्त शिक्षाओं का सार है, राधा कृष्ण का भजन करें, यही सबसे बड़ी उपासना है, इससे बड़ा नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को कहा और परीक्षित महाराज जन्म मरण से अतीत होकर के भगवान के धाम, यह बात परम सत्य है, यह परम सत्य बात है, झूठी बात नहीं। इसलिए हम लोग इसको रियलाइज करें, भगवान का भजन करें। अरे कुछ नहीं है तो हरे कृष्ण सब, अरे 5 बार तो करो, 5 बार करो, देखो जैसे कुछ दिन के बाद में चेंज हो जाएगा, जरूर चेंज हो जाएगा। एक बात उसके साथ में ख्याल रखेंगे, मध्यमान प्याज लहसुन ये सब तामसिक चीजें, इनके खाने से भगवान का नाम नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। इसलिए इनको जहां तक हो सके, ये पशुओं को खाने के लिए गाय भी नहीं खाती, जंगली जानवर लोग खाते। भगवान ने हमें मुख दिया, दूध दिया, घी दिया, सब कुछ दिया, इसलिए ये सब चीजों से दूर रह करके परम पवित्र होकर के हमारे घरों में जो रसोई बनती है बड़े प्रेम के साथ में उसमें तुलसी देकर के हम लोग खाएं और भगवान का देखो अपने आप आने लगेगा। अभी तो करने से मन इधर उधर जाता, उस समय नहीं जाएगा। खान पान के साथ में मन का बहुत संबंध है, जैसा हम खाते हैं वही रक्त बनता है और उसी रक्त से मेद मज्जा होकर के अंत में उसी से बुद्धि और मन बनता है, इसलिए मन भी वैसा होगा। इसलिए इस चीज को समझ करके खान पान ठीक रखते हुए बीच बीच में भगवान की कथा सुनते हैं कि यहाँ पर बड़े साधु संत लोग भी आते हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, उन कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। घर में भी अकेले रहेंगे तो भी भगवान को प्रणाम करके 1-2 बार हरिनाम करके अपने काम में जाइए, सभी काम आपके ठीक रहेंगे और भगवान के तरफ में रुकिए। आज यही कथा करके समाप्त करता हूँ। कल यदि रहेंगे तो सवेरे शायद कहीं मंदिर आप लोगों का हो रहा है और शायद ये थोड़ा सा उसको देखने के लिए जाएंगे, वहां से लौट करके 10:30-11 बजे से हम लोगों का एक क्लास होगा, उसमें जो आना चाहते हैं वो आएंगे, जिनको समय हो करीब 11 से 12, और इसके बाद में हम शाम को हम लोग चले जाएंगे कहाँ, बैजर में जाना है ना, कीर्तन कीजिए, बोलो कृष्ण।